ہاں جی کسی نے سنا ہے؟ یہ تو مسلم جنگ کی گہری باتیں نکال نکال کے لائے بھائی ہے، اس میں ڈیٹیل
بتاؤ.
ہاں یہ مسلم دھرم کی بات ہے، ہر دھرم میں بارہ بارہ دھرم پتا کو ملا کر کے بارہ بارہ مکھیہ من کے ہوتے ہیں، بارہ نیما 108 آتمائیں ہیں جو ہر دھرم سے شریشٹھ آتمائیں چنی جاتی ہیں. بھگوان باپ آتے ہیں تو ہر دھرم سے شریشٹھ آتماؤں کو چنتے ہیں، اور ان شریشٹھ آتماؤں کے آدھار مورت اور بیج روپ آتماؤں کو اکٹھا کرتے ہیں. تو ان میں جو بارہ بیج روپ آتمائیں ہیں مسلم دھرم میں، ان میں سے ایک تو ہو گیا مکھیا دھرم پتا، باقی کتنے بچے؟ 11. وہ 11 کی ہی یادگار ہے جو 11ویں شریف مناتے ہیں. اور
باپ رام اوتار میں پرتیش ہوتے ہیں، 76 میں باپ رام اوتار بھی پرتیش ہوتے ہیں. یہ پرتھوی چکر میں بتاتے ہیں، اور پریئر میں لکشمی نارائن اوتار میں پرتیش ہوتے ہیں.
ایک بات پوچھ لو پہلے،
76 میں باپ رام اوتار میں پرتیش ہوتے ہیں، یہ
چکر
میں بتاتے
ہیں. ہاں تو پوچھنا کیا ہے اس میں؟
لکشمی نارائن.
وہ ایک بات تو کلیئر ہونے دو، 76 میں رام باپ والی آتما جو سنگم یوگ میں نرسے نارائن بنتی ہے اسے پرتیکش ہونا ہوتا ہے. ہاں تو اس سے اس سمبندھ میں پوچھنا کیا ہے؟ ارے ایسے ہی بتا دو، سن رہا ہوں.
یہ سرشتی چکر میں بتاتے ہیں، اور جب شوٹنگ پیریڈ میں لکشمی نارائن اوتار میں پرتیش کیسے ہوتے ہیں؟
جو لکشمی نارائن ہے سنگم یوگ کے، وہی تریتا میں جا کر کے رام بنتے ہیں. کیا اس لیے कृष्ण के जो फॉलोअर्स हैं और राम के जो फॉलोअर्स हैं उनमें लड़ाई चलती है। वो कहते हैं राम पहले और वो कहते हैं नहीं कृष्ण पहले। वास्तव में कृष्ण की पूजा तो बच्चे के रूप में होती है और राम की पूजा बचपन के रूप में होती है या बड़े रूप में होती है? बड़े रूप में होती है। तो राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण तो बच्चे को कहा जाता है। संगम युग में जो निराकार राम शिव है वो साकार राम में प्रवेश करके नरको नारायण बनाता है। उस नारायण से सतयुग में कृष्ण जैसा बच्चा 16 कला संपूर्ण पैदा होता है। सतयुग में होती है 16 कलाएं। त्रेता में जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते आत्माओं की कला दो कम हो जाती है, इसलिए त्रेता में 14 कलाएं रह जाती हैं। युग बदल जाता है, उस बदले हुए युग में भी राम वाली आत्मा फिर आगे आ जाती है। इसलिए हनुमान के लिए खास गाते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। क्या इस सृष्टि में चारों युगों में चारों युगों के आदि में राम वाली आत्मा का ही प्रताप है? चारों युग नहीं, बल्कि भगवान बाप जब संगम युग में आते हैं उसमें भी उसी आत्मा का प्रताप बढ़ता है। तो जो नारायण है संगम युग का और त्रेता का जो राम है वो एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। इसलिए बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माना 76 आता है। ये 65 की वाणी है। 76 में वो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है जो संगम युग में नारायण का पद धारण करती है। और उनका नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाबा ने दी है या नहीं दी है? तो जो नई दुनिया की सौगात दी है उस नई दुनिया में जाना आना करते हो? करते हो? रुको, जवाब तो दो। जाना आना करते हो या नहीं करते हो? हैं? करते हैं, करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। जो सरेंडर हुए हैं उनमें से कोई तीव्र पुरुषार्थी है जो जाना आना करते हैं? जो सरेंडर ही नहीं हुए वो तो जाना आना नहीं करते, वो जानते ही नहीं है कहाँ है। वही काशी करवट। काशी करवट माना अंधेरा कुआ, गहरा कुआ, गहराई में समझने की बात है कि नई दुनिया का संगठन कहाँ स्थापन हो रहा है। ज्ञान का खांडा लगा हुआ है, उन्होंने लोहे का खांडा लगा दिया है, उसमें एंगल बना के कूदते हैं। ये एंगल है 7 दिन का कोर्स, कोर्स लिया, एंगल बनाया, बुद्धि में बात बैठी और स्वाहा हो गए। हाँ भी करेंगे। और
बाबा मंदिर से मकर संक्रांति के दिन में अयप्पा मंदिर से एक दीप नजर आता है,
अच्छा
बहुत साइंटिस्ट लोग कहते हैं उस दिन में और जो इंडिया से बहुत लोग पहुंचते हैं उस टाइम ये मैंने टीवी में देखा ये बीच को टाइम बीच के लिए आधा घंटा के होता है बीच जल
का अच्छा
तो आपको बहुत साइंटिस्ट लोग भी कोशिश की बीच जल का कर
अयप्पा स्वामी के मंदिर की बात कर रहे सुनो और दूसरे मंदिर वालों को नहीं दिखाई पड़ता और दूसरे धर्म वालों को नहीं दिखाई पड़ता किसको दिखाई पड़ता अयप्पा स्वामी उनका तो नाम ही है अयप्पा स्वामी कैसे कपड़े पहनते हैं काले कपड़े पहनते हैं जो काले कपड़े हैं वो काली माई भी पहनती है ना और मुसलमानों में जो है वो भी कैसे कपड़े पहनती है काले कपड़े पहनती है काले कर्म हो जाते हैं तो काले कपड़े ही पहनते हैं और जब काले कपड़े पहनते हैं तो धर्मराज की मार से बचेंगे नहीं मरते नहीं बचते जब नहीं बचते हैं तो जो सोटे लगते हैं तो बोलते हैं अय्या अब ये धर्मराज की मार खाते खाते उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है समझा ये कोई दूसरे नहीं है ये रुद्रमाला के मणके हैं जिनकी यादगार ये पंथ में चल रही है उन्हीं आत्माओं को वो दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ता है और अभी फिर महाशिवरात्रि आने वाली है फिर उन्हीं को दिखाई पड़ेगा और दुनिया वालों को दिखाई नहीं पड़ेगा और हैं राम वाली आत्मा को सारी दुनिया नहीं पहचानेगी न मानेगी लेकिन जो आत्माओं का बाप है उसको सारी दुनिया मानेगी आत्माओं का बाप आत्माएं निराकार तो आत्माओं का बाप भी निराकार और उस निराकार को सभी धर्म वाले मानते हैं भारतवासी साकार को भी मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं क्योंकि ज्ञान और ज्ञान की गहराई भारतवासियों में ज्यादा है या विदेशियों में ज्यादा है भारतवासियों में गीता का ज्ञान ज्यादा गहराई तक नसों तक भरा हुआ है तो ज्यादा ज्ञान में जो गहरे घुसे हुए हैं उनकी बुद्धि इस बात में चलती है कि भगवान ने आकर के जन्नत बनाई तो कैसे बनाई मुसलमान लोग तो कहते अल्लाह मियां ने जमीन बनाई अल्लाह मियां ने आसमान बनाया अल्लाह मियां ने आफ्ताब बनाया अल्लाह मियां ने चंद्रमा बनाया अरे बनाया कैसे वो तो निराकार है ज्योति है ज्योतिबिंदु है कैसे बनाया ये बुद्धि तो चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए तो जिनकी बुद्धि चली उन्होंने गीता में लिखा हुआ है व्यास जिनको भगवान कहा गया प्रवेश तुम मैं प्रवेश करने योग्य हूँ गीता में एक शब्द आया है मैं प्रवेश करने योग्य हूँ प्रवेश तो आत्माएं भी करती हैं फिर भगवान के लिए ये क्यों कहा गया मैं प्रवेश करने योग्य हूँ क्योंकि भगवान निराकार निर्विकार निरहंकारी है उसको देह का अहंकार होता ही नहीं क्योंकि उसकी अपनी देह है ही नहीं वो ऐसे कोई कर्म करता ही नहीं जो देह का बंधन बंधे गर्भ में जन्म लेने पड़े इसलिए भगवान तो अजन्मा है अकर्ता है अभोक्ता है हाँ वो जब किसी मनुष्य तन में प्रवेश करता है तब भोग वासना वो शरीर धारी लेता है। भगवान भोग वासना से परे है हमेशा, लेकिन कार्य कैसे करेगा नई दुनिया की स्थापना का? पुरानी दुनिया का विनाश का कार्य करने के लिए शरीर तो चाहिए, ज्ञान सुनाने के लिए मुख तो चाहिए। तो इन बातों की गहराई पर विदेशी लोग ध्यान नहीं देते। वो देह के सुखों में इतने लिप्त हो चुके हैं जन्म जन्मांतर कि देह ही देह उनको याद रहती है, भौतिक सुखी ही याद रहता है। और
बलि कौन
बलि
जो बलि चढ़े, अब्बल नंबर बलि चढ़े सो बलि।
नीला कलर
तो
विशेला है ना?
नीला कलर
नीला कलर है ना? नीला कलर नीला कलर
तो अरे स्याही कोई तो लगाएंगे बनाने के लिए। कलयुग में तो सारी दुनिया नीली हो जाती है। जो 24 आत्माएं हैं सूर्यवंशी और 24 आत्माएं जिनमें सूर्यवंशी 12 है और चंद्रवंशी 12 है, जिनके आधार पर सूर्यवंशी चंद्रवंश स्थापन होता है, वो 24 आ रहे जो है वो तामसी बन गई है या सतो प्रधान है? तो कैसा रंग दिखाएंगे? ये नीला ही दिखाएंगे। विषैले हो गए हैं 2400 आ रहे हैं, इसलिए उनको विषैला दिखाया गया। गलत क्या दिखाया? और
बाबा दादा जी कहेंगे कछुए के ऊपर मंथन होता है वो कछुआ को नाम सकते
हैं। कछुआ को
मछली
मछली का मछली
कछुआ है विष्णु, जो अपने इंद्रियों को समेटने की जिसमें शक्ति है, जब चाहे इंद्रियों से कर्म करे और जब चाहे इंद्रियों से कर्म न करे, उसकी यादगार है कछुआ। सदैव कहाँ रहता है? पानी में रहता है। उसका दूसरा नाम है नारायण, नार आयन, आयन माने घर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कोई क्षीर का सागर होता है या पानी का ही होता है? होता तो पानी का ही है, लेकिन शुद्ध ज्ञान जल है, इसलिए क्षीर सागर कह दिया। तो ज्ञान जल में निवास करने वाला है, इसलिए उसको नीचे दिखाया गया है और उसके ऊपर मथानी रखी हुई है, मेरु पर्वत। वो मेरु पर्वत कहो, हिमालय पर्वत कहो, हिम का आलय अर्थात बर्फ का घर है। बर्फ पिघलने वाली, पिघल करके बहती रहती है या जाम रहती है? जाम रहती है। तो ब्रह्मा का जो बुद्धि रूपी घर है वो जाम है या पानी की तरह बहने वाला है? जाम है। इतनी ढेर सारी मुरलियां चली, भगवान ने ब्रह्मा के मुख से आके इतनी वेदवाणी लंबी चौड़ी सुनाई, कहते ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। लेकिन आज कोई वेदवाणी को पढ़ता है, उसका अर्थ समझता है? क्यों नहीं समझता? क्योंकि जिसके मुख से वेदवाणी निकली वो स्वयं ही उस वेदवाणी के गहरे अर्थ को नहीं समझता, इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जो ब्रह्मा से पैदा होने वाले मनुष्य हैं, उन्होंने भी उस वेदवाणी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। खास कोई वेदवाणी पढ़ता है यहाँ? कोई बैठा है जो वेदवाणी पढ़ता हो? नहीं। और शास्त्रों को पढ़ेंगे, वो है व्याख्याएं। वेदों की व्याख्याएं निकली तो आरण्यक निकले, ब्राह्मण निकले, शतपथ निकले, उपनिषद निकले, ये व्याख्याएं निकली वेदों की, वो लोगों ने पढ़ी। तो उसकी शूटिंग भी कहीं होती होगी। जब भगवान बाप आते हैं, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाते हैं, उस वेदवाणी के गहरे अर्थ को कोई नहीं समझता। जिस तन में मुकर्रर रूप से भगवान प्रवेश करता है, आदि से लेकर के अंत तक, जो नर से नारायण बनने वाला है, वो ही उस वेदवाणी के गहरे अर्थ को समझता है। वो कहाँ का रहने वाला? नारायण, क्षीर सागर में रहने वाला, ज्ञान के सागर में रहने वाला, वो ही ज्ञान के गहरे अर्थों को समझता है। समझता भी है और फिर लोग समझते भी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि नारायण का ज्ञान जल बहने वाला है और ब्रह्मा का ज्ञान जल बर्फ है, जाम। उनकी बुद्धि नहीं चलती गहराइयों में, इसलिए ये दिखाया है कि वो मेरु पर्वत मथानी बनाया गया और सांप को रज्जू बनाया गया, रस्सी। क्या रस्सी? माने जो उस मथानी को बांधती है, बांध करके उसको घुमाती है। उसके घूमने से सागर जो है, दही में मथानी जब घूमती है तो क्या अंतर पड़ता है? दही छाछ बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो ब्रह्मा के द्वारा जो भी वेदवाणी निकली वो लिक्विड बन गया, सागर में मंथन हुआ। किसके द्वारा? रज्जु के द्वारा, सर्प के द्वारा। वो सर्प कौन है? हैं? वासुकी, वसु। वसु माने क्या? वासुकी माने क्या? वसुदेव माने क्या? वासुदेव माने क्या? जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, शिव का फॉलोअर शैव, ऐसे ही क्या वसु का पुत्र वासुकी। वसु माने क्या? धन संपत्ति। कौन है धन संपत्ति? है जो वसुदेव है, धन संपत्ति देने वाला है, वो कौन है? भक्ति मार्ग में तो लिख दिया कृष्ण भगवान का बाप है। अरे बाप ही बच्चे को धन संपत्ति देगा, और कौन देगा? तो वसुदेव है वो कौन हुआ? हैं? शिव बाबा, परमपिता परमात्मा शिव। जो आत्माओं का पाप है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण वो 84 जन्मों के चक्र को जानता है और एक एक के 84 के पार्ट को जानता है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं वो अपने पूर्व जन्मों की बात को भूल जाते हैं। ये मृत्यु भी एक ऐसा बवंडर है, एक ऐसी दुर्घटना है, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो आदमी अपने पूर्व जन्म की तो क्या, इस जन्म की सारी बातें भूल जाता है। ऐसे ही मृत्यु भी एक ऐसा ही उपक्रम है इस ड्रामा का कि मनुष्य सब कुछ भूल जाता है पूर्व जन्म की बातों को। अब जिस जो जन्म के चक्र से ही नहीं आ रहा है उसको तो याद रहेगा ना, तो वो परम पिता परमात्मा शिव उसको सारा ज्ञान है, एक एक अणु अणु का ज्ञान है, एक एक आत्मा का ज्ञान है, हर आत्मा के 84 जन्मों की कहानी का ज्ञान है। इसका ज्ञान का विस्तार और किसी मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकता, कोई धर्म पिता में नहीं हो सकता, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, वो ऊंचे ऊंचे धर्म पिता है, ऊंचे ऊंचे धर्म स्थापन करने वाला है। इस्लामी लोग इस बात को मानते हैं, अल्लाह अब्बलदीन, अल्लाह ने क्या स्थापन किया, अव्वल नंबर का दीन माना धर्म स्थापन किया, तो वो ऊंचे से ऊंचा बाप है। सब धर्म पिताएं उस बाप को मानते हैं, मानते हैं, इसका मतलब कभी जाना भी होगा। ये एटम बम बनने का ही टाइम है, जब दुनिया का विनाश भी होता है, नई दुनिया की स्थापना भी होती है, उस समय सारी दुनिया को असलियत का ज्ञान होता है। कोई को कम ज्ञान होता है, कोई को ज्यादा ज्ञान होता है। अब जो जितना बड़ा पात्र छोटा पात्र होगा तो उसमें जल कम समाया जाएगा, बड़ा पात्र होगा तो ज्यादा जल समा जाएगा। माना जिसने जितने जास्ती जन्म लिए होंगे उसमें उतना ही जास्ती ज्ञान भरा हुआ होगा। जिसने ऑलराउंड सृष्टि में पार्ट बजाया होगा उसमें सारा ज्ञान होगा। मिलता किससे है, एक ही परमपिता परमात्मा शिव जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो आकर के सारा ज्ञान देता है। वो परमपिता परमात्मा वसुदेव है। क्या वसु माने ज्ञान धन संपत्ति का देने वाला है, इससे बड़ी धन संपत्ति दुनिया में और कोई होती ही नहीं, बेहद की संपत्ति देने वाला है। वो हुआ वसुदेव और उसका बच्चा वासुदेव जिसको भगवान कृष्ण कह दिया। वासुदेव नाम भी अथवा उसको वासुकी कह दो, क्या कह दो, वासुकी। तो वासुकी नाग रज्जु के रूप में लगाया गया, राइट, यस, जो देवताएं हैं, देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो भी खींचातानी कर रही है उसकी, और जो लेफ्टेस्ट आसुर हैं वो भी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये रस्सा कसी चलती है, इस रस्सा कसी में तो उसके गुरुओं की हालत क्या होती होगी, असुर भी खींचते और देवताएं भी खींचते। तो ये दिखाया गया है कि कछुआ है विष्णु, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, बाकी चार हाथों का कोई आदमी नहीं होता है, लक्ष्मी नारायण के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, जो कलयुग के अंत में आकर के पति पत्नी के स्वभाव संस्कार आपस में टकराते हैं, वो कोई घर ऐसा है जिसमें पति पत्नी मिलकर के स्वभाव से, संकल्प से, वाचा से और कर्मणा से एक बन के रहते हो? कोई भी नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब भगवान आकर के मनुष्य को क्या बनाता है? देवता। कैसा देवता? विष्णु जैसा देवता। और गोत्र ब्राह्मणों के 9 गोत्र हुए, 9 ऋषियों के आधार पर 9 गोत्र बने हैं। दुनिया में जितने भी मुख्य मुख्य धर्म हैं, जो आस्तिक हैं नंबर वार, उनकी संख्या 9 है। गिन के रख लो, सूर्यवंश, चंद्रवंश, ये सतयुग त्रेता में, द्वापर में इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, और कलयुग के शुरुआत में सन्यास, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख, और उसके बाद आर्य समाजी, अर्धनास्तिक। नास्तिक भी नहीं कहे क्योंकि भगवान को तो मानते हैं लेकिन साकार में किसी को नहीं मानते। इसलिए 9 प्रकार के धर्म हैं, इनके 9 ऋषि हुए हैं आदि में। ऋषि माने पवित्र, जिन पवित्र आत्माओं ने इन 9 धर्मों का बीजारोपण करने के कार्य में विशेष सहयोग दिया। वो 9 ऋषियों के नाम पर 9 गोत्र बने हैं ब्राह्मणों के। इसलिए ब्राह्मणों में कहा जाता है कि ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं, कोई ऊंची कुरी, कोई नीची कुरी। और
हैं
अरब देश में,
हाँ जी, यहाँ पे तेल बहुत मिलता है,
तेल, हाँ, पेट्रोल बहुत मिलता है।
पानी को कम करके खरीद करना
है। हाँ, एक होता है पानी और एक होता है पेट्रोल। क्या पानी में ताकत है या पेट्रोल में ताकत है? हैं? पेट्रोल में ताकत ज्यादा है, पानी में उतनी ताकत नहीं है। कौन सी ताकत? भौतिक शक्ति ज्यादा है या आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा है? बेहद में आ जाओ, पेट में रोल, पेट में रोला मचाई देने वाला, वो भौतिक है या आध्यात्मिक है? हैं? ये तो भौतिक है, बहुत सुख मानते हैं। ये पेट्रोल बहुत सुख देने वाला है, बहुत ताकत देने वाला है, लेकिन ये कैसी ताकत देने वाला है? बहुत एक ताकत देने वाला है। और जल, बेहद में ज्ञान जल, ये आध्यात्मिक शक्ति देने वाला है। अधि माने अंदर, आत्मक माने आत्मा, आत्मा के अंदर जो शक्ति मिलती है वो जल से मिलेगी या पेट्रोल से मिलेगी? जल से मिलती। तो ज्ञान जल से शक्ति देने वाला परमपिता परमात्मा है, और पेट में रोला मचाए करके जो शक्ति देने वाले हैं, लेने वाले हैं, सुख लेने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, वो ये समझते हैं यही सुख सर्वोपरि सुख है। क्योंकि इस्लाम धर्म की आत्मा सत्युग त्रेता में तो आती ही नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग के सुख क्या होती है। वो राक्षसी सुख को ही सुख मानते हैं, और इस राक्षसी सुख में स्त्रियों की दुर्गति होती है। और ईश्वरीय ज्ञान क्या कहता है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है ज्ञान के बारे में, स्त्रियों के बारे में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां देवताएं रमण करते हैं। ये है अंतिम निर्णय कि पेट्रोल श्रेष्ठ है, ज्यादा कीमती है, या ज्ञान जल ज्यादा कीमती है। ज्ञान जल ज्यादा कीमती है, है? भगवान को जगाने के लिए, हे देवताओं अब सोने का टाइम नहीं है, अब जग जाओ, अब हम आ गए।
चाणक्य ने शास्त्र बेचकर चंद्रगुप्त के पढ़ाई के लिए लगाई तो
इसका अर्थ शास्त्र में कोई पढ़ाई है क्या? ये द्वापर युग के आदि की बात है या मध्य की बात है या अंत की बात है, कब की बात है? है द्वापर के आदि की बात है। आदि में सात्विक स्टेज होती है युग की या तामसी स्टेज होती है, है? सात्विक स्टेज होती है। जब सात्विक स्टेज थी उस समय गीता शास्त्र को ही सर्वोपरि मानते थे, और शास्त्रों को इतना ऊंचा नहीं मानते थे। सदगति देने वाली श्रीमद् भगवत गीता है, ऐसा ही बुद्धि में था। बाद में अनेक मनुष्यों के द्वारा अनेक शास्त्र लिखे गए, तो बुद्धि में अनेकता भरेगी, एकता भरेगी, अनेकता भर गई। तो चाणक्य ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, है? क्या किया? अच्छा काम किया। सप्तऋषि हैं, और जो एक बाप दादा है वो तो अलग है। क्या इसलिए बोला वो सात और आठ सब वैल्यूबल हैं, लेकिन जब अंगूठी बनाते हैं तो नौ रतन डालते हैं, नौ में एक वैल्यूबल है, नहीं आठ वैल्यूबल है और नौवा वैल्यूलेस है, उसकी बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर आठ की बात है। तो जो नौ है उनमें एक बीच में होता है मुखिया, और आठ चारों तरफ है। आठ जो चारों तरफ है उनमें एक मिक्स है वैल्यूलेस, तो सात ही रह गए, तो सात वैल्यूबल नहीं है उतने जितना एक वैल्यूबल है। तो एक है बाप दादा, कंबाइंड पार्ट दारी। और दाल चावल आलू सबसे अच्छा भोजन। यज्ञ के आदि में जिनको गहरी गहरी बीमारियां थी उनको छाछ और बाजरे की रोटी 15 दिन तक खिलाई और साफ स्वस्थ बने रहे। यज्ञ की आदि की बात है, जब सेंटर्स खुलना भी नहीं शुरू हुए थे उतने। ये भावना जो है वो बहुत बड़ी चीज है। जहाँ सात्विक भावना होती है वहाँ बात ही बदल जाती है। कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, वैद्य हो, हकीम हो, उसके ऊपर अगर भावना नहीं है, विश्वास नहीं है, तो दवाई काम ही नहीं करेगी। तो क्या करोगे, दाल चावल आलू खाना शुरू करोगे या नहीं है? जबरदस्ती भावना पैदा करोगे। और
पांडवों को जाना पड़ता है
आपको भी जाना पड़ेगा। बाप को जाना पड़ता है कि नहीं, अज्ञातवास में है? अरे तुम्हारे बेहद के बाप को अज्ञातवास में जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है? तो तुमको नहीं जाना पड़ेगा। अरे अस्त्र दिखाओगे तो लोग पहचान नहीं जाएंगे, अरे ये तो वो ही है, है? तुम्हारा बाप पब्लिक में जाकर के ये सारे अस्त्र ज्ञान के दिखाएगा तो लोग पहचान नहीं जाएंगे, यही है यही है यही है, पकड़ो, नहीं पहचानेगा तो उठा के रख दो छुपा के। हाथ उठा दो। उसने देह अहंकार दिखाया होगा बाप को, है? बाप का डायरेक्शन हो और अम्मा का डायरेक्शन हो, ज्यादा ऊंचा कौन है? अम्मा का डायरेक्शन था, लेकिन अम्मा किसके कंट्रोल में? बाप के कंट्रोल में। तो फिर बाप की मानना पड़े ना। हाँ जी,
बाप दादा ने तुम बच्चों को स्वर्ग की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना?
स्वर्ग की सौगात नहीं दी है, उल्टा पलटा मत बोलो। नई दुनिया की सौगात दी है, माना नई दुनिया का फाउंडेशन डाला गया है। नई दुनिया का जो फाउंडेशन डाला गया है उसकी सौगात तुम बच्चों को मिल गई। हाँ,
हाँ,
पूछा
तो आपने अभी बताया कि जो सरेंडर वही वहाँ पे आना जाना कुछ लोग
नहीं, उनमें भी जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उन्हीं को पता है, दूसरों को पता नहीं है।
बाकी जो पुरुषार्थी है, बाकी जो पुरुषार्थी है,
हाँ,
जैसे घर
गृह घर में से ही निकले हुए आए हुए सरेंडर हुए
हैं।
अच्छा, सरेंडर हुए हैं वो भी नहीं जानते हैं, जो सरेंडर नहीं हुए हैं वो तो यस सर्वे कमा समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिनके काम विकार के संकल्प पूरे नहीं है वो गृहस्थ को छोड़ने वाले नहीं है, चार दीवारी को छोड़ने वाले नहीं है, धंधा गोरी छोड़ने वाले नहीं है। एक ही चीज मिलेगी, या तो पवित्र धाम मिलेगा या तो अब एक अपवित्र दुनिया मिलेगी। हाँ बाबा ने क्या कहा? घर ग्रस्त में रह के, लेकिन घर ग्रस्त में रहने का मतलब ये है कि जैसे बाप बेहद का गृहस्थी है, घर ग्रस्त में रहता है लेकिन बुद्धि उपराम है या कीचड़ में दबी हुई है।
ऐसे
हैं? हाँ, तुम वो आना जाना कर रहे हैं, घर गृहस्थ वाले भी आना जाना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे।
जो नहीं आना जाना कर पा रहे हैं,
जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी बुद्धि काम विकार में लिप्त है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो धंधे दौड़ी की दुनिया छोड़ नहीं पा रहे। बाप बाप कहता है, बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, तुम्हें धंधे दौड़ी की दुनिया का करने का क्या मतलब है? जिसकी बुद्धि में दुनिया के धंधे दौड़ी नहीं छूट रहे हैं, उससे पाप बनेगा या नहीं बनेगा? तो पाप से मुक्त होना चाहते जो यज्ञ में सरेंडर हो जाते हैं, जो भी कर्म करेंगे यज्ञ के लिए करेंगे या दुनिया के धंधे दौड़ी के लिए करेंगे, तो उनके पाप बनेंगे हैं? नहीं बनेंगे।
लेकिन बाबा ने कहा कि सरेंडर करने के लिए, यज्ञ में सरेंडर करने के लिए बहनों को सरेंडर नहीं किया जाता
है। बहनों को सरेंडर नहीं किया जाता, भाइयों को कर दे, आओ सरेंडर कर दे तुम्हें।
जब तक बैल बना है,
हैं?
जब तक बैल बना है,
हाँ,
तब तक बाबा के योग तो प्रसाद नहीं हुआ
है।
तो
भाइयों की बात करो ना, बहनों की बात क्यों करें? बहनों को सरेंडर नहीं किया जाता है। बैल, हाँ वो तो ठीक है, गोपाल कन्हैया गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? गोपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैल पाल तो नहीं गाया हुआ है। तुम क्या समझते हो कि बैलों को भी चांस मिल जाए?
हैं? हम ये कह रहे हैं कि बाबा ने बैलों को सरेंडर करने की अनुमति
नहीं है। हाँ, नहीं, बाबा ने कहा तुम अपने को सरेंडर समझो, सरेंडर समझ करके चलो, बाकी स्टाम्प पेपर पर लिख करके तुमको सरेंडर नहीं किया जाएगा। आज तुमको सरेंडर कर दिया जाए और कल तुम फैलपना शुरू कर दो खुलेआम बाजार, तब क्या करेंगे?
बाबा यहाँ
दे सकता है, तन मन धन समय संपर्क संबंधी सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण, जैसे बाप चलाना चाहेगा वैसे चलेंगे, तो क्यों नहीं सरेंडर? पड़ेगी पड़ेगी, तो सरेंडर कहाँ हुआ? अभी देखना आगे चल के युगलों की कैसी महिमा निकलती है। ऐसे युगल भी निकलेंगे जो घर गृहस्थ में रह करके और पूरा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। अर्जुन गृहस्थी था या भगवान के प्रति सरेंडर हो गया था? गृहस्थी था,
परिवार ऐसे है।
आगे चल के और देख लेना कौन पति कौन पत्नी।
बाबा आपकी बात जो है सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ बिजनेस इस तरह के होते हैं कि लोगों को गृहस्थी कराना पड़ता है।
पड़ता है, पड़ता है, माने राजा है कि मजबूरी है?
मजबूरी है,
तो फिर राजा कैसे बनेंगे? जो यहाँ ब्राह्मण जीवन में मजबूर है, मजबूत नहीं है, वो राजा कैसे बनेंगे? सरेंडर
हो जाएंगे,
माने नाक पूरी रगड़ जाएगी तब सरेंडर हो जाएंगे, गले से ऊपर पानी चला जाएगा तब सरेंडर हो जाएंगे।
गीता पाठशाला में वही जाते हैं तो घर गृहस्थी बने होते हैं और घर गृहस्थी में इधर उधर का धंधा धंधा लगा रहता है। उन तरह की घर गृहस्थी जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक और कहीं सरेंडर होने का तो कैसे सोचा?
मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, ये मुक्ति नहीं मिलेगी, ये पेड़ किसने पकड़ा हुआ है? अरे गिरी गिरी हस्ती का पेड़ किसने पकड़ा हुआ है?
इसका एक सिंगल सिंगल भाई माता चल रही है, सिंगल भाई या माता ज्ञान में चल रही है तो पूरे परिवार को छोड़ के तो एक में जाने से सकते बाबा जमा किया है जो घर की परवरिश किसको करनी है, घर की परवरिश भी तुमको करनी है।
हाँ तो बाबा सबको छुट्टी देता है क्या कि आकर के ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हो जाओ, देता है
जो परवरिश कर रहे
हैं। अरे पहले जवाब दो, बाबा जितने भी भाई लोग आते हैं उन सबको परमिशन दे देता है कि ईश्वरीय यज्ञ में आकर के समर्पित हो जाओ, नहीं देता
वो, कैसे आना जाना करेंगे बताइए,
कैसे आना जाना करेंगे, एक घंटे ही तो आना जाना है और क्या करना,
एक घंटे क्या प्रसाद हो रहा है,
एक घंटे 24 घंटे कर्म करो और बाप को याद करो, कर्म योगी हो कि कर्म अलग है योग अलग है,
ये बात तो आप नाम बता रहे
हैं, ये बात अभी लास्ट में पता चली, अभी तक कर्म खूब करते रहे, धड़ा धड़ कर्म करते रहो, याद मत करो बिल्कुल, अभी तक इनको पता ही नहीं था। अरे गीता में कर्मयोग की बात आई है, कर्मयोगी बनो, हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, हम खुद भी प्रवृत्ति मार्ग के हैं, हम निवृत्ति मार्ग के नहीं है। जब हमारा कर्म भी प्रवृत्ति मार्ग का है, कर्म भी करें और साथ में याद भी करें।
और जो सिलेंडर है उनके लिए जो लोग कर्मयोगी है,
हाँ वो भी करें, वो भी कर्म करें, किसी को खाना खिलाते हैं बाप को याद करते जाएं, खाना खिलाते जाएं ताकि बुद्धि में रहे, हम व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, यज्ञ पिता की सेवा कर रहे हैं।
दोनों में अंतर क्या हुआ?
अरे लो अंतर ही नहीं हुआ,
दोनों में अंतर क्या हुआ?
एक व्यक्ति की सेवा करना और एक यज्ञ पिता की सेवा करना, अंतर नहीं हुआ?
घर में जब हम खाना बनाने बैठते हैं तो हमको भी ये बात याद रखती है।
हाँ, घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए तब रोते काहे के लिए, यही तो बात आज मुरली बताई,
यही बात बताई,
मत रो ना,
यही बात बताई,
सच्ची होकर के रहो, ले लिया तो ले लिया, गया तो गया। अरे गोल्डन फॉरेस्ट में यज्ञ का सारा पैसा चला गया, चला गया ना, अब वो भगवान बाप रोएगा बैठ करके क्या, हाँ यज्ञ का पैसा सारा चला गया। इसको कहते हैं कीचड़ में कमल फूल समान रहो, ये कीचड़ की दुनिया है, भले कीचड़ कितना भी हो लेकिन हम डूबने वाले नहीं। ओहो बता दिया, घर ग्रस्त में रहने वाले भी हैं ऐसे इक्का दुक्का चौका जो आना जाना करते हैं और घर ग्रस्त में भी रह रहे हैं, घर ग्रस्त संभाल रहे हैं। आपकी बुद्धि में बात क्यों नहीं बैठ रही
है?
इसीलिए पूछ क्यों रहे, जब बात का जवाब दे दिया अब बार बार क्यों पूछ रहे?
साफ कर दीजिए ना वो।
अच्छा साफ कर दिया और साफ।
अभी आपने कहा कि जो
है
घर गृहस्थ वाले तो वहाँ पे आना जाना करते हैं।
हाँ घर गृहस्थ वाले भी हैं,
कुछ
है ज्यादा नहीं है, सरेंडर्ड वालों की संख्या ज्यादा है। मैंने सहज क्या हुआ, सहज सरेंडर हो करके नई दुनिया में आना जाना सहज हुआ या नॉन सरेंडर हो करके घर ग्रस्त में रह करके नई दुनिया में आना जाना सहज हुआ? सरेंडर होकर के सहज, सब चिंताएं खत्म, न कपड़े की चिंता है, न बीवी की चिंता है, न बाल बच्चों की चिंता है, न मकान की चिंता है, कल गिरता हो सो आज गिर जाए, हमको तो वो दूसरा मकान दे ही देगा रहने के लिए। अरे बाप आया हुआ है, बेहद का बाप है, वो क्या नहीं करेगा। बोलो कैसे दुनिया में एक तरफ भक्ति है दूसरी तरफ ज्ञान है, भगवान बीच में नहीं है, भक्तों को लात मार देगा क्या? मार देगा नहीं। अरे भगवान के तो भक्त भी है, प्यारे प्रजा भी है। जो बाप है बेहद का बाप, उसके भक्त भी है, प्रजा भी है, उसके वारसदार भी है, उसके दास दासी भी है, उसके राज्य को चलाने वाले राज्याधिकारी भी है, छोटे से लेके बड़े तक परिवार भी है।
नौदा भक्ति कहा गया
है?
नौदा भक्ति।
हाँ जी हाँ, नौदा भक्ति क्या कहा गया? हाँ नौदा भक्ति है। हाँ जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। ये तो आपके ऊपर है, जितना जितना ज्ञान बुद्धि में गहराई तक बैठता जाएगा उतना उतना आगे बढ़ते जाएंगे पुरुषार्थ में, खुशी भी बढ़ती जाएगी, उमंग उत्साह भी बढ़ता जाएगा। और
ब्राह्मण बोलते हैं कि आपको दो महीने का शनि लगाओ
है,
ब्राह्मण ब्राह्मण लोग जो है उनको बोलते हैं कि आपको दो महीने का शनि लगा हुआ है, कोई भी काम संभव नहीं हो सकता। ये जो है सूर्यवंशी भक्तों को ज्ञान में है, सूर्यवंशी बच्चे और चंद्र बच्चे इन लोगों के लाभ होता है, इन लोग को डरने के बाद
नौ धर्म है। कितने हैं? नौ धर्म है, नौ ग्रह है, नौ ब्राह्मणों की कुरियाँ हैं और नौ बीज हैं। तो जो नौ बीज हैं जिनके नौ ग्रह तैयार होते हैं उनकी शरण में जाने वाले उनकी ही दशा को पकड़ते हैं। मान लो कोई ने बृहस्पति की दशा पकड़ी, बृहस्पति के संरक्षण में रह रहा है तो किसकी दशा में है? बृहस्पति की दशा में। और किसी ने सबसे नीचे की दशा पकड़ ली राहु की, उसके संरक्षण में पहुंच गया और बाप को छोड़ दिया तो किसकी दशा आ गई? राहु की दशा आ गई। ऐसे ही है, और ओम शांति।